SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
दोस्तों, जहां ऑस्ट्रेलिया वक्त वक्त पर दोनों देशों के बीच आए तनावपूर्ण संबंधों में सुधार करना चाहता है, चीनी प्रीमियर ली कियांग की ऑस्ट्रेलियाई यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 7 वर्षों में किसी भी चीनी प्रीमियर की पहली यात्रा है। प्रीमियर ली कियांग के संसद भवन में प्रवेश करते ही कैनबेरा में पूर्ण औपचारिक स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 7 वर्षों में पहली बार प्रीमियर ली की अध्यक्षता में चीनी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की।
We should uphold mutual respect, seek common grounds while sharing differences, and promote mutually beneficial cooperation. Mr. Prime Minister, I sincerely hope that during my current visit, I will work with you to build a more mature, stable, and fruitful, comprehensive strategic partnership.
इस यात्रा के निष्कर्षों को और गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एशियन स्टडीज के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर प्रदीप तनेजा। प्रदीप जी, आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूंगी ये पूछकर कि अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो ऐसे में ये जो विजिट है ये दोनों देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विजिट थी, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी चीन जा चुके हैं, विदेश मंत्री पेनी वोंग भी जा चुके हैं, लेकिन चीन से कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल पर कोई नेता यहाँ नहीं आए थे पिछले 7 सालों से। तो 7 साल का गैप नॉर्मली काफी बड़ा होता है, और खासतौर से ऐसे दो देशों के बीच में जिनमें की काफी व्यापार है, और चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो व्यापार का जो साझेदार है, पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण विजिट थी। और जिस तरह से उनका यहाँ पर स्वागत हुआ, प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी उनको वहाँ कैनबरा में भी मिले, उसके बाद उनके साथ पर्थ भी गए, पर्थ में भी मिले, तो मतलब मेरा जो इसमें उसका मैं उसको अगर आंकता हूँ तो मुझे लगता है कि काफी उसको महत्वपूर्ण नजरिए से देखा गया है, ऑस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से भी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से।
जी, और प्रदीप जी, हाल ही में हमने देखा कि वाटरवेज में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, विपक्ष ने भी ये बात कही थी कि क्षेत्रीय सुरक्षा इस मुलाकात का एक प्रमुख मुद्दा रहना चाहिए, और ऐसे में 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU भी साइन किए गए हैं चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है?
देखिए, जहां तक कि साउथ चाइना सी की आप शायद बात कर रही हैं,
जी,
तो जहां तक कि साउथ चाइना सी के मतलब वहां जो चीन जिस तरह से वियतनाम को या फिलीपींस को जिस तरह से हैरेस करता है, तो वो मतलब इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक चुनौती सामने खड़ी करता है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है और जो दूसरे देश हैं इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक में उनके लिए भी है। लेकिन साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और चीन के जो बायलैटरल संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंध जो हैं, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिप्लोमेसी में आप दोनों चीजें कर सकते हैं, डिप्लोमेसी में आप आपसी संबंध भी बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ जो ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि साउथ चाइना सी वाला मुद्दा है, उस पर आप आलोचना भी कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने की है। तो अभी चीन के प्रधानमंत्री पर्थ से अभी निकले नहीं थे, उससे पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया काफी उसकी आलोचना करता है, चीन ने जिस तरह से चीन के एक समुद्री जहाज ने, एक कोस्टल वेसल ने जिस तरह से फिलीपींस के एक जहाज को टक्कर मारी, तो वो उसकी काफी आलोचना भी की गई है। तो मतलब ये नहीं, ये जो संबंध है डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आपको देखिए तो ये कोई जीरो सम गेम जिसको बोलते हैं ना, मतलब हिंदी में जिसको कहेंगे शून्य संचय खेल, ऐसी बात नहीं है जिसमें आप मतलब एक देश से संबंध बढ़ाते हैं एक एरिया में तो दूसरे एरिया में कम हो जाता है आपका जो प्रभाव है, ऐसी बात नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध अब जो हैं वो काफी रियलिस्टिक हैं, उसमें कोई रोमांटिसिज्म नहीं है
जी।
उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ हम दब के रहेंगे या हम जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए चाहे वो मानव अधिकार वाले मुद्दे हों चाहे सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हों, हम उन पर जब बोलना होगा तो बोलेंगे, लेकिन साथ साथ जो पारस्परिक संबंध हैं उनको भी बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे
जी। हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक पहल की जा रही है दोनों देशों के बीच आए तनावपूर्ण संबंधों में सुधार करने की, तो ऐसे में जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संबंधों में जो डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेस हम देख रहे हैं, विकास जो हम एक तरह का देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये किसी भी तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है?
देखिए, अब वो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के नेताओं ने पहले ये कहा है कि हमारे जो आपसी संबंध हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो आपसी संबंध हैं, वो किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं करते हैं, ना वो किसी तीसरे देश को निशाना बना के बनाए गए हैं या बढ़ाए गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध हैं वो उनकी अपने आप में महत्वता है, और दूसरा जो चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर ऑस्ट्रेलिया के चीन के साथ जो संबंध हैं अगर उनमें थोड़ी स्थिरता आती है या स्थायित्व तो आता है, स्टेबिलिटी जिसकी बात फॉरेन मिनिस्टर पेनी वॉन्ग करती हैं, तो उससे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो संबंध हैं उनका अपना लॉजिक है, उनका अपना महत्व है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में जो थोड़ा अब इम्प्रूवमेंट हुआ है इस विजिट के दौरान, तो उससे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
प्रदीप जी, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार है वो ऑस्ट्रेलियाई राइटर यूंग हेंग जूंग की रिहाई को लेकर चीनी सरकार पर दबाव डाल रही है, लेकिन जब बात आती है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की, तो क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को इस पूरे मुद्दे को और जटिलता से पेश करने की जरूरत है?
देखिए, जहाँ तक डॉक्टर यांग हंग चुन की बात है, यांग हंग चुन को चीन में मौत की सजा सुनाई गई है
जी।
और उनका जो पूरा लीगल प्रोसेस था चीन में वो काफी मतलब उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो उसको लेके ऑस्ट्रेलियन सरकार ने अपनी नाखुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने भी इस मुद्दे को चीन की सरकार के साथ लिया है, और दूसरा विदेश मंत्री भी इस मुद्दे को लेकर चीन की सरकार से, चीनी विदेश मंत्री से बात करती रहती हैं। तो जहां तक चीन के मानव अधिकारों का सवाल है, वहां तो मानी हुई बात है ऑस्ट्रेलिया और चीन में काफी मतभेद है इन मुद्दों को लेकर, और ऑस्ट्रेलियन सरकार को ऐसे मुद्दों के बारे में बातचीत करनी चाहिए, चीन से कहना चाहिए, और मुझे लगता है कि बिहाइंड क्लोज डोर ये बातें होती भी हैं। देखिए, हमने पहले देखा है कि जो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार थी छंगलई को चीन में उनको जेल में डाला हुआ था
जी।
लेकिन उसके ऑस्ट्रेलियन सरकार के प्रधानमंत्री अल्बेनीजी और पेनी वॉन्ग के हस्तक्षेप के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। तो लेकिन इनका जो मामला है यांग हंग चुन का थोड़ा और गंभीर है, क्योंकि इनको मौत की सजा सुनाई गई है वहां पर
जी।
तो अभी तो जो पहली जो प्राथमिकता है ऑस्ट्रेलियाई सरकार की वो ये है कि पहले जो उनकी मौत की सजा है उसको खारिज किया जाए, मतलब चीन की सरकार से ये कहा जा रहा है कि देखिए इसको आप जो है रद्द करिए। उसके बाद अगर वो उनकी मौत की सजा रद्द होती है तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियाई सरकार उनकी रिहाई की बात करेगी। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो उसको दी जा रही है कि उनको जो डेथ पेनल्टी या मौत की सजा सुनाई गई है उसको रद्द किया जाए।
प्रदीप जी, आपका SBS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने सुना कि ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान चीनी प्रीमियर ली कियांग के साथ बातचीत में व्यापार, मानवाधिकार और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख मुद्दे रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देशों के ये जो संबंध हैं, ये किस ओर मुड़ते हैं और इनका क्या परिणाम निकलता है। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में प्रस्तुत किया भव्या पांडे ने।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.